आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारण के समय सार
नमः समय साराए और क्या चकार के चित्त भावाए भावाए सर्व भावांतर
सार परमागम की 26वीं और 27वीं गाथा पर अभी तक चर्चा हुई, जिसमें ये कहा गया कि व्यवहार नए से देह और आत्मा एक ही है, इसलिए व्यवहार नए से वो देह के आधार पर जो तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है वो मिथ्या नहीं है। लेकिन निश्चय नए से देह और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह निश्चय नए से ये स्तुति सत्य नहीं है। ये बात कही और इसी बात को तीन गाथाओं में आगे बहुत संक्षेप में एक बात कही, उसे पढ़ के हम सुनते हैं। 28, 29 और 30 तीन गाथाओं एक साथ पढ़ते हैं। अमन्नम जीवादो देहम पौगलमयम थोड़त्तु मुनि मन्नदु संसदो मन्नदु संसदो मन्दो मये केवली भगवम तम निश्चय न जुज्जदी शरीर गुणा ही होंति के बलिनो केवली गुणो थुणदि सो तत्तम केवली धुणदी नय रम्मि बन्न दे जह नविरन्नो बन्नया कदा होदी देह गुणे थुबन्ते न केवली गुणा थुदा होंती। क्या है इनका साहूकार? जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके जो साधु जन ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति कर ली, वह निश्चय नए से ठीक नहीं है। तम निश्चयेन जुज्जति, वो निश्चय नए से बात ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर के गुण न केवली नो केवली के गुण नहीं है, और जो केवली के गुणों के आधार पर स्तुति की जाए वही वास्तव में केवली की स्तुति होगी। पर उदाहरण देके इस बात को तीसवीं गाथा में समझाते हैं कि नय रम्य बन्न दे जय नविरन्नो बन्नया कदा होदी। नगर का वर्णन करने से जैसे राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार देह का वर्णन करने से केवली भगवान की स्तुति नहीं हो जाती। जरा विचार करो कि हम वर्णन करें ऐसा राजा का कि उसका नगर बहुत बड़ा है, विशाल है, ऊंचे ऊंचे कोट हैं, नीची नीची खाइयां हैं, बगीचों से हरा भरा है, है ना? लिखा हमने, तुमने खुद लिखा है, प्राकार कविलतांबर। प्राकार माने कोट, कोट से जिसने आकाश को निगल लिया है, माने इतना ऊंचा है जैसे आकाश तक पहुंच गया हो। और क्या कहते हैं, उपबन राजीव निगीर्ण भूमि तलम, पर बगीचों से मानो उसने पृथ्वी को निगल लिया है, पृथ्वी दिखती ही नहीं कहीं, बगीचे बगीचे हरा 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 हरियाली हरियाली। और तिवितीव नगर मिदम परखा बलेन पातालम, और खाई के बहाने ऐसा लगता है पाताल को पी लिया है, पाताल का सारा पानी खाई में आ गया है। तो ये जो वर्णन है इसमें राजा का क्या हुआ? क्यों राजा का वर्णन तो है ही नहीं। ऐसे ही हम देह की प्रशंसा करें तो उसमें भगवान की स्तुति कहाँ से आ गई? देखो क्यों आप बाहुबली जी के दर्शन करने गए थे ना प्रकाश जी, नहीं गए? अरे यार तुमने बहुत गड़बड़ की, क्या भगवान है, आप देखते देखते ही दंग रह जाते। 1000 वर्ष पुराना पत्थर और उसकी पालस तक आज तक फीकी नहीं पड़ी। धन्य है उस कारीगर को जिसने इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई, क्यों? और धन्य है उस बनवाने वाले राजा सेठ को जिसने इतना पैसा खर्च किया। गजब है, तुम गए नहीं? कि भाई साहब ये जो तुम बात कर रहे हो ये तो पत्थर की प्रशंसा है, कारीगर की प्रशंसा है, पैसा खर्च करने वाले सेठ की प्रशंसा है, इसमें बाहुबली कहाँ से आ गए? बाहुबली का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। जो जाता है जो जाता पत्थर पत्थर की प्रशंसा करता है, 1000 वर्ष तो पालिस की प्रशंसा है। क्यों? अभी तो मूर्ति तक नंबर नहीं आया है, मूर्तिमान तक तो कौन पहुंचे, ख्याल में ना? ऐसी देह की प्रशंसा में खूब करे तो उसमें आत्मा की बात कहाँ से आ गई, ऐसा बोलते हैं। इसलिए निश्चय से हम विचार करें तो ये भगवान की स्तुति नहीं, ये बाहुबली की स्तुति नहीं है। इसमें कहाँ चक्कर है बोलो, इसमें कहाँ खराबी है? लेकिन एक बात ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल अधर्म ही हो, मूर्ति है महान, वास्तव में 45,000 वर्ष से फीका नहीं पड़ा है, उसमें सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो अभी जरा मैं लौट के बात करता हूँ, कोमल जी घबराना नहीं। अब कैसे कहते हो कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है? अरे अच्छा राजा नहीं हो, सुव्यवस्थित राजा नहीं हो तो ये सारे नगर में बगीचे कैसे हो गए? क्यों म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष खाऊ हो तो नगर की क्या दुर्दशा हो जाती है? आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो नगर का सौंदर्य उसके व्यवस्थापक की व्यवस्थित बुद्धि को बताता है कि नहीं? देश में शांति राजा की प्रशासन क्षमता को बताती है कि नहीं? तो ऐसी क्या बात करते हो कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है? देखो एक बात समझ लो बहुत मार्मिक, कोई आदमी किसी गांव में जाता है तो वहां के लोग कैसे हैं इसका निर्णय वो तुम्हारे घरों में जाके करने वाला नहीं है। तुम्हारे घर में तो वो तब जाएगा जब तुम उसे छह दफे नोरे करके बुलाओगे, और होगा समय तो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं भी जाएगा, बिना बुलाए थोड़ी तुम्हारे घर में जाएगा। लेकिन हमारे जो जनायतन है, मंदिर है, संस्थाएं हैं, उनमें बिना बुलाए भी आएगा कि नहीं आएगा? आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा और दर्शन करने आएगा। और यहाँ की समाज कैसी है इसका निर्णय वो तुम्हारे मंदिर को जिनालय को देख के करेगा। हैं? तुम्हारे लेटरन बाथरूम में कितना बढ़िया संगमरमर लगा है वो जो तुम्हारे लेटरन बाथरूम तक पहुँचेगा तब पता चलेगा ना। और उससे क्या पता चलेगा? यही तो पता चलेगा कि तुम भोग को जीवन में कितना अधिक महत्व देते हो। उससे कौन सी तुम्हारी महानता पता चलने वाली है? क्यों? लेकिन मंदिर की सफाई, नीट एंड क्लीन, सुंदरतम व्यवस्था, अनुशासित कार्यक्रम, गहरी तत्व की चर्चा, पठन पाठन, ये देश के ये निर्णय करेगा कि यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ का मुमुक्षु समाज कैसा है। क्यों आनंदलाल जी? तो राजा से कौन मिल सकता है? राजा से तो जब नंबर आएगा तब मिलेगा, लेकिन दूसरे नगर का आदमी आएगा तो नगर को देख के निर्णय करेगा कि राजा कैसा है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, नहीं करता है वो नेमीचंद काका बोला करते थे ना कि दरवाजा देख के हम बता सकते हैं कि इस घर की मालकिन कैसी होगी। गंदा हो रहा है, किसी ने नाक छिनक दी है, किवाड़ों पे लग रही है, ये सब देख दाख करके पता लग जाता है कि इसी घर की मालकिन फूहड़ है। क्यों? और दरवाजे की नीट एंड क्लीन और सब बात देख कर पता लग जाता है कि इसी घर की मालकिन भी सुघड़ है। पता लगता का नहीं लगता? तो राजा के तक कौन पहुंचता है? क्यों अरे भगवान आत्मा तक कितने लोग पहुंचेंगे? जैसे नगर की सुव्यवस्था राजा के व्यवस्थित माइंड की सूचक है, ऐसे ही भगवान की शांत मुद्रा, बीतरागी छवि, नासाग्र दृष्टि, क्यों उनके अंदर में भगवान आत्मा के लीन है इस बात की द्योतक है क्या नहीं है? बोलो सभी बीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरें, उनके अंतर के भावों को बताती है क्या नहीं? इसलिए ये बात वैसी हवा में उड़ा देने लायक भी नहीं है, इसमें भी उसके अंदर की झलक तो मिल सकती है। अंदर के भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे लेकिन देह में विराजमान जो भगवान आत्मा है उसकी झलक तो मिल सकती है ना। वाणी भी पुद्गल की पर्याय है क्या नहीं लाला जी? इन किसी की वाणी सुनकर ये पता तो लग सकता है कि ये आदमी कैसा है। एक वाक्य निकले तो माँ बहन की गाली बिना निकले ही नहीं, जिससे बोले तो झल्ला के बोले, चिल्ला के बोले, ऐसा नहीं लगेगा ये तो आदमी बहुत ही अभिमानी प्रकृति का है, ऐसा लगता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया है। क्यों? हमारे चेहरा के हाव भावों से, हमारे वाणी के बोलने से, क्यों जैसा लगेगा निरंतर दो बोतल पी के ही बैठा है बिना पिए? क्यों? तो उसका बाहर का हाव भाव, उसका वाणी का बोलना, इन सबसे भी अंदर का आत्मा कितना विशाल हृदय पवित्र भाव वाला है ये ख्याल में नहीं आता? आता है। इसलिए व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ तो नहीं है, एकदम ऊपर से उड़ा देने लायक बात तो नहीं है, नहीं तो इन जिनबिंब का क्या महत्व रहेगा? ये जिनबिंब के दर्शन की क्या कीमत है फिर? जिन प्रतिमा जिन सारखी और कही जिनागम माई विंत मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा नाई। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी बाहर की परिणति के अंदर की परिणति को नहीं बताती है? पता तो है कि क्रीम पाउडर लपेटे हो, यहाँ पर लिपस्टिक लपेटे हो, एकदम क्या तैयार करके इधर आए तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये कहाँ खड़ा है। बोलो तरचंदी साहब, और एक शुद्ध शुभ्र एकदम सात्विक सहज प्रवृत्ति में देखे तो उसके अंदर के परिणामों का पता नहीं लगता है? तो बाहर की का जो दर्शन प्रदर्शन है वो भी अंदर के भावों को व्यक्त करना करता है। इसलिए व्यवहार स्थिति एकदम ही उड़ा देने लायक हो ऐसी बात भी नहीं है। जब उसकी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कहा है। देखो कल्पना 16 का भावना की कितनी बात करी थी। तो मैं आज पूजन में बता रहा था बिलाला जी को कि आठों छंद पढ़ के देखो जरा, याद हो तो बोलो। हर छंद में ये लिखा है पूजो श्री जिन राज, पूजो जिनवर गुण खान, क्यों है कि नहीं फल सुन पूजो जिनवर गुण खान लिखा कि नहीं हर छंद में। तो उसमें 8 दफे लिखा कि ये जिनवर की पूजा है, एक जगह भी नहीं लिखा गया 16 कारण भावना की पूजा है। लेकिन हमारे न्याय में नहीं, बोलो क्या करें। समझो ज्ञान का थ्योसम कितना विचित्र होता है। जो सामने गए है उनके अनुसार ज्ञान नहीं होता है, जो हमारे ज्ञान जिसको जैसा जानना चाहता है वैसा जानता है। चंदन भाई का वो बोले याद है कि नहीं, गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। उसमें तो हर पंक्ति पंक्ति में लिखा कि ये पूजा 16 कारण भावनाओं की नहीं, ये जिनेन्द्र भगवान अरहंत भगवान की पूजा है। हर पंक्ति में से निकाल के देखो आप कसूतन जी पढ़ना। अब कल पढ़ना, हर एक छंद पे ध्यान देना। हर एक मैंने कहा जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा। और हमको 40 वर्ष करते करते हो गया और ये जिनेन्द्र भगवान की 16 कारण भावना की पूजा है। हम यही मानते रहे, वो यही मान के करते जा रहे और उसका ध्यान ही नहीं देते। बोलो कैसे क्या कैसा हमारा ज्ञान का थ्योसम काम करता है। क्या लघु जन दादा विचार किया, विचार करो तो ऐसा नहीं है कि उसमें तो कठिन अर्थ था, किसी को किसी पंडित की जरूरत थी कि वो तुम्हें बताए। क्या हम क्या करें, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो ऐसा नहीं है बड़े बड़े विद्वान। लेकिन सवाल कम पढ़े लिखे का कहां है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब उसी पूजन को आप पढ़ो तो वो अर्थ बिना किसी दूसरे पंडित के बताए तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं आता है। एक शब्द ऐसा लगता है कि जो कठिन था और हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती, बिना डिक्शनरी के देखे वो बात हमारे ख्याल में आती कि नहीं आती। लेकिन ख्याल देवे कब, जब हमें ये समझना होगा इसका अर्थ क्या है। हम तो मान के बैठे ही कि 16 कांड की पूजा है, बस 16 कांड की ऐसी होती होगी। तो ऐसे ही हर चीज पर हमको ये ध्यान देना चाहिए दोनों बाजुओं से बिना पक्षपात के। क्यों वैसे ढूंढने जनवाणी में बैठ जाओ कि किरमद पर आएगा वर्ण जनवाणी में है कि नहीं है, तो पूरी जिनवाणी खोज डाल लेना। अंत में यही निष्कर्ष निकालो क्रमबद्ध शब्द जिनवाणी में नहीं है, किरम नियमित शब्द है। क्यों? और यदि दृष्टि प्राप्त हो जाए तो एक एक कदम पर क्रमबद्ध पर्याय दिखाई देगी, कोई पंक्ति नहीं निकलेगी जिसमें आपको क्रमबद्ध पर्याय दिखाई नहीं देगी। देखने की दृष्टि चाहिए ना, इसीलिए तो हम गुरु को जब नमस्कार करते हैं ना तो एक ही बात करते हैं क्या, ज्ञान अंजन सला कया चक्षुरुन मील तुम एने तस्मय श्री गुरु हे नमा। हम उन गुरु को नमस्कार करते हैं कि ज्ञान की अंजन को सलाई के द्वारा जिसने हमारी आंखें खोल दी। ये नहीं कहा कि अर्थ बता दिया, अरे अर्थ करने की पद्धति बता दी। आंखें खोल दी माने क्या, आंखें खोलकर चलना सिखा दिया। हम उस गुरु को नमस्कार करते हैं, आते हैं ना बोलते ना तस्मयी श्री गुरु वे नमा परम्पराचार्य श्री गुरु वे नमा परम गुरु वे नमा परम्पराचार्य श्री गुरु वे। तो नगर की व्यवस्था भी राजा के व्यवस्थित माइंड को और जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व की भावना को, क्यों और जनता को सुख सुविधाएं जुटाना ऐसी भावना को व्यक्त नहीं करती है क्या। तो क्या ये नगर की प्रशंसा राजा की प्रशंसा नहीं है, है। लेकिन कोई पूरी तरह इसको ही राजा की प्रशंसा मान ले और राजा की बात ही नहीं करे तब वो गड़बड़ है। क्या ख्याल में आया कि नहीं, बाहुबली की मूर्ति की प्रशंसा करना भी बहुत जरूरी है। आखिर हमारा वो इतिहास है, वो हमारा संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है, वो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है कि 1000 वर्ष पहले भी हम किस डंके की चोट से भारत में रहते थे और हमारे नग्नत्व का कहीं विरोध नहीं था। सारी दुनिया देखे ऐसा नग्नत्व विराजमान रहता था, हमारे दिगंबरत्व की घोषणा है। उसकी महिमा कम है क्या, क्यों हम कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं, हम कहीं ईरान फीरान से नहीं आए हैं, आ रहे हैं। हम मूल भारत के रहने वाले हैं, हमारी जन्मभूमि ये है। ये नग्न दिगंबर जिन बिंब खड़े खड़े डंके की चोट सारी दुनिया को ये बताते हैं। किसे कहने की जरूरत ही नहीं है कि जैन धर्म दिगंबर धर्म का नाम है। सारे विश्व के लोग आकर ये जान जाते हैं कि ऐसा कोई धर्म है जो नग्नता के बिना पूर्णता को स्वीकार नहीं करता है। ये उसकी महिमा नहीं है कौन कहता है? मैंने जी बाबूलाल जी है, लेकिन भाई साहब अकेली मूर्ति का नाम बाहुबली नहीं है। क्या बाहुबली तो उस व्यक्तित्व का नाम है कि जो आत्मा में जमा, आत्मा की साधना के लिए खड़ा हुआ, तो ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा कि जब तक केवल ज्ञान लेके नहीं निकला, आंख उठा के बाहर किसी को देखा ही नहीं, उस व्यक्तित्व का नाम बाहुबली है। क्यों कैसे जी, इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ऐसे यहाँ कहते हैं जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है, ऐसे ही देह के वर्णन करने से केवली भगवान की स्तुति नहीं होती है। तो देह स्तुति है ही नहीं क्या? है तो भाई साहब व्यवहार स्तुति है, पहले हमने कह दिया ना, पहले तो हम वो बात कह चुके, अब उसके बाद ये बात कह रहे हैं। क्या देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई आदमी मरने की अवस्था में हो, ध्यान से सुनना, समाधि मरण भी ले लिया हो, खूब जोर की प्यास लगे तो डिग जाए सुगंधन जी, और कहने लगे पानी पानी, एक गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी लाना, पानी पानी चिल्लाने लगे रात के 12 बजे, दिन को भी पानी नहीं पीने की जिसने प्रतिज्ञा करी हो, वो तो रात में पानी पानी मांगने लगे, तो क्या करें? साधर्मी भाई जो वहाँ विराजमान हो उनकी क्या ड्यूटी है मालूम आपको? शास्त्र में ये लिखा है कि कोरा उपदेश नहीं देवे, ऐसा लिखा, समझना, क्या कि पहले पानी लाभ है, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, क्योंकि वही उपदेश देना शुरू करेगा, तुम तो अनाधिकाल से हर समुद्र में पानी पिया लेकिन तेरी प्यास नहीं बुझी, तो गुस्सा आएगा उसे तुम्हारा उपदेश सुन करके, गुस्सा आएगा कि मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी दुलाता नहीं उपदेश पिलाता है, ख्याल में है ना, समाधि बिगड़ जाएगी उसकी, तो क्या करे? पहले पानी लाए, पिलाए नहीं, क्या कहा मैंने, लाए, और कहे कि देखो भाई साहब आपने पानी मांगा ना, ये मैं पानी ले आया हूँ, बिल्कुल ठंडा बढ़िया शुद्ध सात्विक है, पानी आ गया, पानी मांगा था कि हाँ पानी मांगा था तो आ गया पानी, अभी तुम सोच लो, अब सोच लो एक बार कि ये पानी पीने से तुम्हारा समाधि में बिगड़ जाएगा, देह तो छूटने की वाली है, अरे पानी पी लोगे तो 8 घंटे बाद छूटेगी कि 8 घंटे पहले, तुम तो समाधि ले ली है ना, अपने परिणामों का विचार करो कि साहब तुम तो ठीक कहते हो लेकिन प्यास सही नहीं जाती है, कि सही बात है, मैं भी जानता हूँ कि बहुत जोर की प्यास लगी और सहना आसान नहीं है, लेकिन वो नरक में जाते हैं ना तो सिंधु नीर पे प्यास न जाए तो पर एक बूंद न लहाए, और पिए तो वही जाना पड़ेगा, इधर पी लो फिर उधर नहीं मिले, इतनी प्यास लगेगी, अभी सोच लो, मैं तो पिलाने को तैयार हूँ, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं देना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें उपदेश देता हूँ, तो उसके परिणाम सुधर जाए, यानी कोरी बातों से नहीं समझाए। क्या एक भूखा आए आपसे खाना मांगे और आप उपदेश पिलाना शुरू कर दे, नहीं चलेगा, ये मार्ग नहीं है जैन धर्म का, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि भगवान आत्मा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान साथ के कारण दुखी है, भूख के कारण तो कोई दुखी होता ही नहीं है, क्यों आत्मा तो खाता ही नहीं है, नहीं पहले उसे जाकर भोजन कराओ, ख्याल में आए ना, और फिर प्रेम से कहो कि भैया अनादिकाल से अनंत बार भोजन किया कुछ लाभ नहीं हुआ, दुख का कारण तो ये है, तो इस पर विचार करो गंभीरता से, क्यों और तुम्हें आजीविका की तकलीफ है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अरे अपने कुछ भी काम करते रहे ना, रहो यहीं, दो टाइम भोजन की व्यवस्था की चिंता मत करो, लेकिन इससे तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं है, दुख दूर तो आत्मा तो सुनेगा वो। एक दीदी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सब शास्त्र की आज्ञा से है ये बात, क्या कहते पहले व्यवहार से संबोधो फिर निश्चय को बताओ। क्या गुरुदेव फरमाते थे कि तुम व्यवहार की धुनाई शुरू कर दी बेटा, अरे बेचारे को पहले को खड़ा तो करो फिर धुनाई करना, अरे तो वो खड़ा ही नहीं हो पाया तुम धुनाई शुरू कर दी, अरे अखाड़े का भी ये नियम नहीं है, अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हो और एक पहलवान गिर जाए और आड़ा पड़ा हो तो दूसरा पहलवान उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है, कब तक कि जब तक कि वो खड़ा ना हो, समझे ना, तब तक उससे लड़ाई नहीं हो सकती है, तुम व्यवहार को खड़ा ही नहीं होने देते हो और धमाधम धुनाई शुरू कर देते हो। अरे जो कसाई से कसाई होता है ना क्रोधी और शत्रु को मारता है और पिटते पिटते बेहोश हो जाए तो फिर नहीं मारता, ऐसा नहीं, वो चाहे तो और लगाए बेहोशी में तस्वीर, क्यों गोली मार देगा नहीं, फिर उस पर मुंह पे पानी छिटकता है, फिर होश में लाता है और फिर गर्दन ऐसी पकड़ के फिर खड़ा करता है, जब वो खड़ा हो जाता है फिर धुनाई करता है, तुम्हें उस क्रोधी जैसी मर्यादा भी नहीं आती है कि तुम व्यवहार को खड़ा ही नहीं होने देते हो धुनाई शुरू कर देते हो, पहले पूजा तो करो तो पूजा हे होगी, पहले दान तो दो तब दान है होगा। क्यों कि साहब आप नहीं बताते हो गुरुदेव जैसा कि दान है दान है। 15-50 लाख दे दिए पैसे में समझ लेना कि हम धर्मात्मा हो गए। कहीं ना थी धूल है धूल है। ये आप क्यों नहीं कहते हो कि तुम 15-50 लाख दो तो हम कहना पहले व्यवहार करा तो करो दुनाई किसकी करे। वहाँ पैसा बरसता था तो उनको दुनाई करने में मजा आता था। यहाँ तो इसके इंतजार में बैठा है कि आप कहो तो हमको यहाँ ने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो ये लोग हमको बहुत परेशान करते हैं कि मंदिर पूरा करना है। लाओ लाओ आपने अच्छा कर दिया। चंद्र कहता इसके लिए इंतजार कर रहे क्या मंदिर लाल जी समझ में आ गया नहीं। समझे ना। तो व्यवहार की उपयोगिता आवश्यकता हमारे जीवन में ख्याल में आवे और उसको ही जो सर्वस्व मान के बैठ जाए तो ये बताना है कि धर्म तो इसके आगे की बहुत बड़ी चीज है तुम उसे ख्याल कर। तो आचार्य महाराज ने कहा कि देख भाई ये जो भगवान की स्थिति है ना देवगुणों के आधार पर ये नहीं कहा कि ये स्थिति है ही नहीं। क्या कहा? ये व्यवहार स्थिति है। ये निश्चय से ठीक नहीं रहती है। तुम निश्चय की तराजू पर तोलोगे तो ये नहीं तोलेगी। अरे तुम सब्जी को हीरे के कांटे पर मत तोलो। सब्जी का कांटा अलग होता है और रूंगर नहीं बहुत कुछ माल चला जाता है। ख्याल में है ना। तुम हीरे के कांटे पर सब्जी तोलने की कोशिश मत करो। ये व्यवहार से जनेन्द्र भगवान की स्तुति है। निश्चय से ये जनेन्द्र भगवान की स्तुति नहीं है। तो शिष्य का एक प्रश्न खड़ा हो गया कि इसका मतलब तो ये हो गया कि स्तुति दो प्रकार की होती है। हम तो समझते थे एक ही प्रकार की होती थी। हम तो भगवान की भक्ति इसी को समझते थे। तो भक्ति का प्रोग्राम भी छपा है 7:15 से 7:25 तक। हम तो इसी को भक्ति समझते हैं। तो ये तो सब व्यवहार में चली गई। और तुम कहते हो कि निश्चय से ठीक नहीं है। तो निश्चय में भी कोई भक्ति भक्ति है क्या? नहीं है क्या? जोनीलाल जी वहां क्यों बैठते हो? इधर आओ ना सामने, है ना, इधर आगे बैठना। क्यों? ये देखिए हम नाटक देखने गए होते तो ऐसी दूर बैठते कैसे? आगे आगे बैठते। कोई बात नहीं है, यहाँ कुर्सी डल जाएगी। उसमें क्या है, आप चेयरमैन हो गए तो कुर्सी क्या ख्याल है? धूप में नहीं है, छाया में जगह है, आगे है कटाई में ज्यादा वाला। क्या बात चल रही है कि शिष्य के दिमाग में एक बात खड़ी हो गई कि बार बार आप कहते हो व्यवहार स्थिति है व्यवहार स्थिति है व्यवहार स्थिति है। इसका मतलब कोई और दूसरी स्थिति भी होती है। क्यों? उसमें से आगे क्या नहीं है बात? जबकि पूजन में लिखा ना अपन ने तुम्हें परम सो गुणे है अनंत धीरे कहे बत के 46 गुणे गंभीर। हे भगवान तुम में तो अनंत गुण है। तो हम तो सुना था 46 है, अनंत भगवान के 46 गुण है। तुम अनंत बता रहे कि हाँ 40 भी है। लेकिन ये तो कहे बत के हैं थोड़ी। कितना साफ लिखा बोलो आप। क्या लिखा? कहे बत के 40 गुण गंभीर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कहबत का अर्थ भी क्या अशोक नगर वालों को समझाना पड़ेगा क्या होता है? क्यों भैया ये बातें तो कहने की हैं, मतलब बात कुछ और है। बोलते कि नहीं बोलते? साहब उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं पधारे। कि ठीक है ये तो कहने की बातें हैं, अंदर की बात तो कुछ और है। बोलते कि नहीं बोलते? अपन कहबत का मतलब समझ गए ना। तो अनंत भगवान के 40 गुण कहबत के हैं तो असली कितने हैं? असली कितना है कि असली अनंत है? उसमें ही लिखा ना तुम्हें परम सो गुण है अनंत धीरे। साफ लिखा ना। पीछे पूछने का जाना कहे बत के 40 गुण गंभीर। तो 40 है तो क्यों तभी अनंत कहीं कह जा सकते थे क्या? अनंत कोई गिना सकता है क्या? अनंत कोई गिन सकता है क्या? और अनंत गुण वाला आत्मा है और नहीं गिन पाएंगे तो सम्मा दर्शन कैसे होगा? क्या हो गया सम्मा दर्शन? ये सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करते हैं क्या? कहे अनंत गुण है किसकी आत्मा में? बंधु जी तुम्हारी में की अनंत भगवान की में? किसने जाने? सर्वज्ञ के सर्वज्ञ के गुण जाने होंगे, तुम्हारे कैसे जानेगा? तुम तो पर हो ना उसके लिए। पर को जानता है आत्मा? पर को जानना तो व्यवहार है। तुम्हारे आत्मा में अनंत गुण है ये किसने देखे? अरे सर्वज्ञ को गाली देना है, उसकी सर्वज्ञता में शंका करना है। हमारे आत्मा में अनंत गुण है सर्वज्ञ ने देखे, अपनी वाणी में कहे, आचार्यों ने लिखे,
और हमने आगम में देखे, असंख्य प्रदेश है ये भी हमने आगम में देखे, ये हमारे आत्मा में असंख्य प्रदेश है, सर्वज्ञ ने देखे, कौन से भगवान महावीर ने, वो हमारे लिए स्वाहे के पर है, समझ लेना अपनी बात क्या चल रही है। कहवत के तो 40 है, तो जिसमें अनंत होंगे उसमें 40 नहीं होंगे, तो कहवत के क्यों कहते, वेदी पक्के ही है, समझ में आएगा यहाँ, जब अनंत है तो 40 तो होंगे ही ना, तो उसे कहवत के क्यों कहते हो, नहीं उसे व्यवहार क्यों कहते हो, कि नहीं है, कभी नहीं है का नाम व्यवहार है, ये तुझे किसने बताया, जरा सुनना, तो है क्या नहीं है, जरा विचार करना, कहीं अभी ऐसी नहीं, धैर्य से कहना, किसी आदमी ने यहाँ बोला, उसने 1,01,000 रुपया मंदिर के लिए दिए, यहाँ खड़े होकर घोषणा की कि फला व्यक्ति ने 1,001 रुपया दिए, उसकी आंख तोड़ चुकी हुई, ये हमने तुमसे कब कहा था कि हमने कितने रुपया दिए तुम घोषणा करना, हमने तो नहीं मांग करी थी ना कि तुम घोषणा करो, हमने चुपचाप दे दिए आपको, हमने मांग तो नहीं की थी, नहीं की थी तो आपने घोषणा क्यों की, क्यों आपको क्या तकलीफ है, 1,00,000 बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारी बदनामी नहीं है, कि बदनामी क्या है, 1,00,000 में 1,000 नहीं होते क्या, जब तुमने 1,00,000 दे तो 1,000 नहीं गए क्या, 1,000 भी दें, झूठ का है तो सत्य, तो बदनामी है क्या, सुनामी बोलो, बदनामी क्योंकि लोग हमें जानते हैं, हमारी हैसियत जानते हैं, 1,000 सुन करके हंसते हैं, क्या करेगा, मरेगा तो साथ में ले जाएगा, मार्केट में तो जा रहा है, करोड़ों रुपए तो पड़ी है, 1,000 देता है, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरी निंदा है, इसलिए बोलना हो तो 1,00,000 बोलो, नहीं बोलना हो तो मत बोलो, लेकिन 1,000 बोलोगे तो नहीं चलेगा, ऐसे हमने है अनंत के गुण, तुम 40 बता रहे, शर्म नहीं है, कि शर्म की क्या बात है, कि 40 नहीं है क्या, अनंत है तो 40 नहीं होंगे क्या, कि होंगे तो भी क्या, 40 कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कि है कभी कह नहीं सकते है कि नहीं है, तो कहबत के नहीं भी हो तो नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है, उनमें से 40 में से 4 है और 42 आत्मा में नहीं है, बोलो अरंत के 40 गुणों में क्यों नहीं है, ये एक मालूम कौन सा गुण है, मालूम आपको, वे अशोक वृक्ष के नीचे बिराजे हैं, एक गुण ही है 40 में, कभी गिने आपने कि नहीं गिने, आज प्रातिहार है कि नहीं, तो तरु अशोक के निकट है सिंहासन सरिदार, एक गुण अरंत का कौन सा है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे, बोलो कितना बढ़िया है, और दूसरा गुण है कि सिंहासन पर बैठे, और तीसरा गुण है कि माथे पे 3 छत्तर लग रहे, और चौथा गुण है कि लोग समय ढाल रहे, ये आत्मा के गुण है, ये अरंत के गुण है, अरंत को क्या लेना देना इनसे, गिनके तो देखो क्या हालत है उनकी, एक ये है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही, एक ये है कि आकाश में दुंदुभी बाजे बज रहे, कितना बढ़िया बैंड आया है, तो दूल्हा का गुण है बैंड है ना, कि बाप के पास 2 नंबर का पैसा ज्यादा होगा इसका प्रतीक है, बढ़िया बैंड, दूल्हे की योग्यता का सूचक थोड़ी है, वो तो इनमें बजा रहे बाजे, ये दुंदुभी आकाश में दुंदुभी बाजे बज रहे, ये भी भगवान के गुण है, मालूम आपको, और उनके नख नहीं बढ़ते, केस नहीं बढ़ते, ये भी एक गुण है, तो उनके तो बढ़ते नहीं है, लोगों के तो माथे से उगते ही नहीं है, गायब हो गया, तो एक गुण तो अपन में प्रकट हो ही गया, क्या है, केस नहीं बढ़ते हैं तो क्या हो गया, नख नहीं बढ़ते हैं तो क्या हो गया, बोलो, 10-10 तो जन्म के अतिशय है, वे जन्म के समय अरहंत ही नहीं है, अरहंत के गुण और जन्म के अतिशय, क्यों, और 14 है देवकृत, तो देवकृत है तो देवों के हुए क्या उनके, तो कितना अच्छा विद्वान है पंडित, इतने बढ़िया पंडाल के नीचे बैठा है, ये पंडाल मेरा गुण है का तो का। क्या बोला जी बोला, तो एक उनमें से एक एक का विचार करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि बात क्या है, कि साहब ठीक है तो हम 40 छुट्टी कर देते हैं, नहीं ऐसे छुट्टी मत करो, उसमें अनंत ज्ञान भी है, अनंत दर्शन भी है, अनंत सुख भी है, अनंत वीर भी है, इसलिए ऐसे रिजेक्ट मत करो बिना देखे, एक एक को देख देख के रिजेक्ट करो कि स्वीकार करो, तो ये बात एक कहवत शब्द में आई कि नहीं आई, कि कहवत के 40 गुण गंभीर, तो सोचने की जरूरत थी कि नहीं थी, कहने क्या करना, सांस में लगी सच्ची होगी, अरे सांस में लगी वो तो सच्ची होगी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए हमें अपनी बुद्धि में उसको समझना पड़ेगा, तो ये व्यवहार स्तुति है मोहनलाल जी, ये जो कहा उन्होंने कहा देह की स्तुति से आत्मा की स्तुति करना, उसको उन्होंने एकदम रिजेक्ट नहीं किया, क्या कहा, ये व्यवहार की स्तुति है, पर उसी में उन्होंने इशारा कर दिया क्या कि कोई निश्चय स्थिति अलग होती है, कोई दूसरे प्रकार की भी स्थिति होती है। देखो हम दुनियादारी में बहुत चतुर हैं, जरा से इशारे में समझते हैं। मैंने कहा तो देखो मुझे अपनी लड़की की सगाई करनी है और फला आदमी के लड़के से बात चल रही है, अब मैं ज्यादा यहाँ से परिचित नहीं हूँ, आप लोग सब जानते परिचित हो तो मुझे बताओ ना कि वो लड़का ठीक है ना, तो आप चुप क्यों बोलो ना क्या है तो चुप, तो 50% तो आपने चुप रह के कह दिया, कहा कि नहीं कहा बोलो सर, कहा भैया आप बोलते क्यों नहीं, क्या बोले साहब हमको तो इसी गांव में रहना है आप तो कल चले जाओगे क्या रह गया आप, हम लोग एक ही बात कहते हैं कि आपको स्वयं इस बात का निर्णय करना चाहिए, किसी से पूछ कर निर्णय नहीं करना चाहिए, इसमें से तुम्हारा काम बोलो कुछ बाकी रह गया क्या नहीं। अरे भाई सब बातें जवान से ही थोड़ी कही जाती, थोड़े इशारे भी समझा करे कि दुनियादारी में तो बहुत इशारे समझते हो और ये धर्म की बात में इशारा नहीं समझते हो। जब आचार्य ने कह दिया कि ये तो व्यवहार स्थिति है, इतने में समझ लेना चाहिए था कि कोई असली बात अलग है, आ गया कि नहीं आ गई। अब ये झूठा लाल कहने की क्या जरूरत है, अब्बल उस्ताद होगा तो सेन में ही समझ जाएगा, उन्हें डंडा मार मार के समझाओ तो नहीं समझने वाला है, क्यों ख्याल में आना, उतने से हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, आ जाता है कि नहीं, लोक में तो कहीं ऐसी भूल नहीं होती है। देखो आपको तो मालूम है ना, श्री कृष्ण सगुण मार्गी थे, यानी दो है ना, ये निर्गुण मार्ग है सगुण मार्ग, तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, तो उद्धव उनके दोस्त थे वो ज्ञान मार्गी थे और ये थे भक्ति मार्गी, वो प्रमुखता देने वाले थे, तो उनको बहुत समझाते थे लेकिन वो मानते नहीं थे, तो उन्होंने भक्ति की महिमा समझाने के लिए गोपियों में अथाह भक्ति थी तो उन्हें इस बहाने भेजा कि तुम जरा गोपियों को समझा आओ, मेरे वियोग में भी बहुत दुखी हो रही हैं तो तुम समझा के आओ। उन्हें समझाने नहीं भेजा, भेजा तो इसलिए कि उनकी भक्ति देख के दे समझ के आएंगे, तो इन्हें ज्ञान का घमंड जरा ढीला पड़ जाएगा, भेजा तो इसलिए, लेकिन बहाना क्या बनाया, तुम समझा आओ। ले गए गोपियों को समझाने के लिए, पंडित बन गए और उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया, अंत में लौट के आने लगे, क्यों जब लौट के आए तो सब गोपियों ने कहा कि आप एक कह देना एक कह देना, तो वो कुछ कह ही नहीं पाई। तो श्री कृष्ण ने पूछा, मैं लंबा ना नहीं चाहता, मुझे संक्षेप में निपटा रहा हूँ, संक्षेप ने कि क्या कहा तुम, क्या समझाया है गोपियों ने, क्या कहा, कोई न्यूज भेजी, कोई समाचार भेजा, कोई चिट्ठी पत्री दी कि नहीं, कुछ नहीं कहा। तो उसने एक रत्नाकर कवि ने दो पंक्तियां लिखी है, कहा नेक कही बेननी, अनेक कही नैननी, और रही सही सो कह दीनी हिचे कीन सो। आया समझ में कि नहीं, कि उन्होंने जवान से तो बहुत कम कहा, इतना कहा कि तुम इतना कह देना कि बस खत्म, इतना कहा और आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लग गई, तो मुंह और गले से शब्द ही नहीं निकला, तो गला रुंध गया और हिचकी बन गई, इसलिए बेचारी कुछ नहीं कह पाई। अब मैं आपको क्या बताऊं कि उनने क्या कहा, क्या समझे ना, कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। तो श्री कृष्ण बोले कि मेरी समझ में आ गया, क्या कहा कि नेक कही बेननी, वाणी से तो बहुत कम कहा लेकिन अनेक कही नैननी, वो आंसुओं की धारा ने बहुत बात कह दी कि मेरे वियोग में वे कितनी दुखी हैं, कि सारा समाचार आ गया कि नहीं, जो कुछ बचा था वो हिचकियों ने कह दिया। नेक कही बेननी, अनेक कही नैननी, और रही सही सो कह दीनी हिचे कीन सो। भगवान आत्मा की समाचार भी भाई साहब ऐसे ही है, नैनों से तो बहुत कम कहे जाते हैं, बाकी तो कुछ नैनों से कहे जाते हैं और बाकी कुछ हिचकियों से कह दिया जाता है। ये तो अंदर से समझने की चीज है, तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई ये स्थिति तो है लेकिन ये तो व्यवहार स्थिति है, इसका मतलब कोई और निश्चय स्थिति भी होती है। ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए उन्होंने 26 से लेकर 30 गाथाएं रची। शिष्य के मन में ये बात पैदा करने के लिए कि पूछे तो कि निश्चय स्थिति क्या है। आचार्य को निश्चय स्थिति का स्वरूप बताना था, क्या समझे ना, इसलिए वो भूमिका बांध के पांच गाथाओं में यहां तक लाए। क्या ऐसे कोई नहीं आता ऊपर तो सुनने के लिए, और कोई चाहता हो कि एक दफे तो आए तो चलो भैया नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हमारी तो प्रतिज्ञा है हम तो नहीं जाएंगे। तो प्रतिज्ञा थोड़ी भंग हो रही है, अपन इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि भैया जो कह रहे हैं वो सुनने के समझने के लिए, अपन तो इसलिए चले कि देखें तो क्या गलती करते हैं, गलती पकड़ने जा रहे हैं। गलती पकड़ने के लिए तो औरंगजेब भी गए थे ना, बौद्धों के स्कूल में पढ़े थे कि नहीं, भेष बदल के रहे थे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ 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 चलो चलो आए तो किसी तरीके से, क्यों ऐसे ही वो व्यवहार स्थिति को मानता था तो झटका दिया गया, ये स्थिति ठीक नहीं है, देह के गुणों की स्थिति को आत्मा की नहीं माना जा सकता, तो झटका क्या कहता है, तो ये स्थिति नहीं है, है तो लेकिन ये तो व्यवहार स्थिति है। अब पूछे कि दूसरी भी कोई होती है, यहाँ होती है कि कौन कि निश्चय स्थिति, तो निश्चय स्थिति किसे कहते हैं, तो हम इसे बताएं। इसलिए पकड़ के आचार्य किस तरकीब से यहाँ लाए, इसलिए अब 31वीं गाथा पे चलती है। देखो देखो पेज नंबर 63 आपके पास किताब हो तो, नहीं है ना, अथ निश्चय स्थिति माह तत्र गे गायक शंकर दोष परिहारेण ताबत। अब निश्चय स्थिति कहते हैं और वो निश्चय स्थिति गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। अब जरा मामला कठिन आएगा, चार दिन निकल गए, ये निश्चय स्थिति की बात आएगी ना, अभी तो स्थूल कठिन था, अब अपन थोड़ी बारीकी में जाएंगे, उसके लिए कमर कसके तैयार रहना। क्या गे गायक शंकर दोष का परिहार करो तो निश्चय स्थिति होती है। गे गायक शंकर दोष क्या है भैया, कि देखो दुनिया को दो भागों में बांटो, एक का नाम गायक और एक का नाम गे, दुनिया को दो भागों में बांटो। पहले बांटा था दो भागों में, कौन कौन सा, एक का नाम आत्मा और दूसरे का नाम देह, वहां क्या था, एक का नाम आत्मा और दूसरे का नाम देह, और यहाँ क्या कह रहे, एक का नाम आत्मा माने गायक और दूसरे का नाम गे, तो वो आत्मा तो की जगह पे यहाँ बोला गायक और देह की जगह बोला गे, क्यों, कि देह का पेटा जरा बड़ा करना था, देह में तो तुम अकेले शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर गांव सुमेर पर्वत ये कुछ आता नहीं है, तो उसका नाम गे रख दिया तो छह ही द्रिप आ गए, लोकालोक आ गया। नाम क्यों बदला समझे ना, नाम कोई बिना मतलब के नहीं बदला है, वहां देह का था, वहां देह नाम क्यों रखा था, क्योंकि तेरा सबसे ज्यादा राग देह से है और सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन देह को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वहां देह को एनलार्ज किया था। अब तू देह को ही पकड़ के नहीं बैठ जाए, और सारे जगत को भी भगवान आत्मा से भिन्न है ये ज्ञान कराना है, इसलिए उसका नाम बदल के गे रख दिया, ख्याल में है कि नहीं, और आत्मा का नाम क्या रख दिया, गायक। सारी दुनिया को दो भागों में बांट, एक गे और एक गायक। अभी गे और गायक माने अपना आत्मा, जरा समझना है, बहुत मर्म की बात है, अकेला अपना ही आत्मा क्यों, तुम्हारा आत्मा का गायक नहीं है, अरंत भगवान का आत्मा का गायक नहीं है, सिद्ध भगवान आत्मा का गायक नहीं है कि हाँ उनके लिए होगा, हमारे लिए तो वो गे है, हम तो उन्हें जानेंगे, उसका गायकपना हमारे क्या काम आएगा, हमारा गायकपना हमारा जानने का जो स्वभाव है वो हमारे लिए गायक है और बाकी सब हमारे लिए गे है, समझा। देखो एक आदमी कपड़े की दुकान करता है, एक सराफे की दुकान करता है, करता कि नहीं करता है? तो वो सराफे की दुकान वाला खुद दुकानदार है और कपड़े की दुकान वाला उसके लिए क्या है, दुकानदार के ग्राहक, वो अपने आप में तो दुकानदार है लेकिन उस सराफे वाले के लिए तो उसकी दुकान पर सोना चांदी खरीदने आता है, उसके लिए तो ग्राहक है, इसके लिए भी होता है, होता है देख लो आप, समझे ना, क्योंकि वो कपड़े वाला डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर के लिए क्या है, मरीज है, वो कोई कपड़ा बपड़ा वाला नहीं है, वो मरीज है, ख्याल में है कि नहीं है। अपने भजन आता है ना कि हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर भ्रमते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। क्या मतलब है? नाम धराने का अर्थ तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, उन्हें नहीं समझते गुजरात वाले, उनको समझाना पड़ता है। अपन तो समझते हैं ना, भैया अपने बाप दादों का नाम मत धराओ, बोलते कि नहीं बोलते। नाम धराना माने बदनाम करना, कोई अच्छे अर्थ में नाम धराना नहीं होता है। तो हमने नाम धराए, नाम धराए माने एक कोई अच्छा काम किया हो हमने, ऐसी बात नहीं है। कौन से काम? कि पर घर भ्रमत, दूसरों के घर घूमे तो नाम धराए। नाम ही धराओ वो क्या करोगे? जरा से आनंद सुख के लिए दूसरों से भीख मांगते भरे तो नाम नहीं धराएगा तो क्या करेगा? करोड़पति का बेटा भीख मांगता भरे दूसरे के दरवाजे पर तो नाम नहीं धराएगा तो क्या करेगा? ऐसे अनंत आनंद का पिंडे भगवान आत्मा, क्यों आनंद का कन्ने भगवान आत्मा, और जरा जरा से सुख के लिए रोटी दाल के सामने हाथ पैर पसारता है तो नाम नहीं धराएगा तो क्या करेगा? दूसरे के दरवाजे पर जाओगे तो नाम धराओगे। तुम्हारा जो असली नाम है उसका कोई उपयोग ही नहीं करता है। अपने माँ बाप का दिया हुआ एक नाम है ना अपने पास, अच्छा है बुरा है ठीक है, लेकिन है ना अपना एक नाम। कोमल चंद जी, आपका नाम कोमल चंद है ना, माँ बाप का दिया हुआ बढ़िया नाम, बहुत अच्छा है। कोमल चंद से बढ़िया और क्या नाम होगा? कठोर चंद तो नहीं है ना, और डॉक्टर को तो कोमल चंद होना ही चाहिए ना। तो कोमल चंद नाम आपका दिया हुआ है, लेकिन किसी दूसरे के घर जाओ तो कोई कोमल चंद नहीं कहता है। सब्जी मंडी भाई मैं जाओ खरीदने तो वो कहता है ग्राहक है। दूसरे डॉक्टर के पास आ जाओ तो वो आपको मरीज कहता है, डॉक्टर नहीं मानता। आप डॉक्टर हो के मरीज बोलो, इंदौर इलाज कराने जाओ तो वे आपको मरीज मानते हैं कि डॉक्टर? हम तो डॉक्टर हैं, हो गए तुम अपने घर के डॉक्टर, यहाँ तो मरीज हो, चुपचाप बैठो। अरे तो भगवान तुम हो गए अपने गायक, हमारे लिए तो गे हो, ठीक है नहीं? वकील के पास जाएंगे तो क्लाइंट बन जाओगे तुम, और बस में जाओगे तो सवारी, ड्राइवर कंडक्टर कौन आया गया? एक सवारी आई, बेवकूफ मैं पंडित हुकुमचंद का सवारी, हमारे लिए तो सवारी हो। जिसके दरवाजे पे जाओगे एक नया नाम रख लेगा, वो तुम्हारा नाम पूछेगा ही नहीं। पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते और नाम अनेक धराए, जहां जिसके दरवाजे पे गए उसने नया नाम रख लिया। पर हमारी सभा में आओगे तो श्रोता नाम रख लेंगे हम, हजार श्रोता थे, आदमी नहीं है कोई नहीं, आप श्रोता, ख्याल में आएगा नहीं? जिसके दरवाजे पर जाओगे वो आपके लिए एक नया नाम रख देगा। किसी की बारात में जाओगे तो बराती, लड़की वाले के यहाँ जाओगे तो घराती, क्यों? अरे बराती घराती कहाँ से निकाले तुमने? बन जाते कि नहीं बन जाते? हर जगह जाओगे एक नया नाम रखा जाएगा, और अपने घर आओगे तो बदनाम नहीं होगे। तुम्हारा नाम तो जो अनाजी का है ना, भगवान आत्मा, वो रखा जाएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए कहते हैं कि तेरा नाम तो ज्ञायक है, क्योंकि तुझे जानने वाला तत्व है, और सारी दुनिया गे है कि देवी तो जानते हैं कि जानते होंगे, तेरे लिए तो वो गे है। तो सारी दुनिया को दो भागों में बांटो, कौन कौन से? गे गायक, ये तो वेद विज्ञान का काम है। और ये शंकर क्या है? गे गायक शंकर, शंकर माने मिलावट। देखो शंकर में एक ध्यान रखना, तालब दिशा समझते कि नहीं, उसके ऊपर बिंदी हो और शंकर हो तो उसका मतलब होता है शांति करने वाले। शंकर भगवान वाला शंकर है ना, उसका अर्थ क्या है? शांति करने वाले। भक्तांबर में लिखा ना, तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तुम तीन लोक में शांति करने वाले होने से भगवान तुम ही शंकर हो। और ये सड़क का सा हो जाए, दंती सा जिसे बोलते हैं आप, उसके ऊपर बिंदी रख दो तो उसका अर्थ होता है मिलावट। इतना फर्क पड़ता है। गे गायक शंकर माने मिलावट वाला शंकर है। बोलते ना आप शंकर, शंकर बाजरा होता ना आपकी भी, और ऐसे शंकर बैन शंकर, हाँ वो समझते ना आप। और वो जैसे मान लो गधी हो माँ और घोड़ा हो बाप, तो जो खच्चर होता है उसको भी शंकर बोलते हैं। दो जातियों का शंकर, शंकर मंडप मतलब समझ गया ना, मिलावट। इन शब्दों में एक एक शब्द पर बहुत ध्यान रखने की बात है। एक जरा भी बदला तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक नया नया विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गया था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो बाप को चिट्ठी अंग्रेजी में लिखता कि नहीं लिखता है, क्यों? बाप को पता लगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा हूँ, तो उसने संस्कृत में चिट्ठी लिखी अपने बाप को। तो उसने क्या लिखना चाहता था कि मैं यहाँ अपने मित्रों के साथ दिन में एक बार भोजन करता हूँ। उसको संस्कृत में उसने लिखा अहम स्वभी सह सकृत वारम भूंगते। स्व माने सड़क का सा हो ना, उसका मतलब होता है मित्र, और स्वभी सह माने मित्रों के साथ, और सकृत में सड़क का सा हो तो उसका अर्थ होता है एक बार। तो मैं मित्रों के साथ एक बार लिखता हूँ। उसके दिमाग में आया ये सड़क का सा, ये तो हिंदी वालों का है, अपन संस्कृत वालों का तालब भी सा है। प्राचीन हिंदी में देखना सब तालब भी सा सड़क के सा हो गए है ना, पूजनों में देख लेना आप। तो उसने तालब बीसा लिखा हर जगह। उसका क्या मान स्व माने होता है मित्र, और तालब बीसा हो जाए तो स्व माने होता है कुत्ता। सड़क का सामने वहां मिले तो होता है मित्र, और तालब बीसा में वहां मिले तो उसका अर्थ होता है कुत्ता। और सड़क का सा हो तो सकृत माने होता है एक बार, और यदि तालब बीसा हो तो उसका अर्थ होता है लीद, घोड़े की लीद होती है ना, समझ गए ना आप। अब आदमी की लीद समझ लो आप, जो भी समझ लो उसका अर्थ होता है। तो उसने तालब दिशा लिख दिया तो क्या अर्थ हो गया आप समझ लो आप, कि मैं कुत्तों के साथ क्या खाता हूँ, समझ रहे कभी? एक इतने में कितना अंतर आता है, इतना ध्यान रखना, क्यों? वही साका चक्कर यहाँ है शंकर में। शंकर माने भगवान हो जाता है शांति करने वाले, आदिनाथ भगवान भी हो जाता है, शंकर भगवान भी हो जाता है, क्या ना? और यहाँ सड़क का सा हो गए तो मिलावट गया हो जाता है। तो कहते गे का गायक में संकर करना, मिला देना, गे और गायक के बीच भेद नहीं करवाना, गे को गायक समझ लेना, गायक को गे समझ लेना। तो भगवान आत्मा गायक है तो उसे गे मानता, मैंने तो आज तक आत्मा को जाना नहीं, मुझे तो अब आत्मा को गे बनाना है। तो आत्मा को तो गे बना लिया, और जानेगा काय से? इंद्रियों से, आंख से देखूंगा। तो आंखें जो गे हैं उन्हें गायक बना लिया, इंद्रियां गे हैं उन्हें बना दिया गायक, और आत्मा गायक है उसे बना दिया गे। तो एक गे का गायक में संकर कर दिया, अथवा मुझे दोनों को जानना है तो दोनों को गे बना दिया, अथवा दोनों को गायक बना दिया, आत्मा भी जानता है और इंद्रियां भी जानती हैं, तो खींचड़ा कर दिया कि नहीं? गे और गायक का मिलावट, उसका नाम है गे गायक संकर, और ये है दोष। और इसका परिहार हो जाए, माने हमारी दृष्टि में से गे गायक संकर दोष निकल जाए, तो भगवान की पहले नंबर की स्तुति है। अब क्या है भक्ति? भक्ति का स्वरूप तो देखो, ये भक्ति किसे कहते हैं? ध्यान में जीना गायब, बोलना चालना गायब, कि मैं त्रिकाली तो भगवान आत्मा जुदा हूं, और सारा जगत मेरे से भिन्न है, ये तूने जाना तो भगवान का नंबर एक का भगत हो गया। और तूने 7.5 से 7.8 तक खूब ध्यान में लीला लगाए तो तेरा भगवान के भक्तों में नंबर ही नहीं है, न एक न दो न तीन, तीन प्रकार की स्थिति आने वाली है, उसमें वो ध्यान मजीरा वाले का नंबर ही नहीं है तारा जी। क्या लगा उन्होंने पहले? अच्छे निश्चय स्थिति आ है। अब मैं निश्चय स्थिति को कहते हुए, तो पहली स्थिति कैसे होती है? तो गे गायक शंकर दोष परिहारेण ताबत, के गे गायक शंकर दोष का परिहार जिसमें हो वो पहले नंबर की स्थिति है। वो कैसे होती है इसकी बात तो अपन गाथा में करेंगे, अभी तो उत्थान का जी बात हुई है। अब कमर कस के आना, देखो भाई आज तक तो लेट आए तो चलता है, जितना सुना उतना सुन लिया, क्योंकि अभी ऐसा विषय नहीं आया था कि आप लेट आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब ऐसा विषय आने वाला है कि आपका यदि शुरू का 5 मिनट छूट गया तो 55 मिनट बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। ये क्रमबद्ध विवेचन होगा, व्यवस्थित विवेचन होगा, एकदम अप टू डेट। और असली बात, ये असली समय सार तो अब आने वाला है, ये अभी तो भूमिका थी आचार्य यहां तक लाने। ये व्यवहार भक्ति तो अपन करते ही है ना, क्यों? उसमें तो आप 6:15 से 6:30 आ जाते कि नहीं? अब व्यवहार भक्ति में तो 6:30 से 8:30 2 घंटा जमे रहते हैं ना, अब 1 घंटा निश्चय भक्ति में, क्यों? ऐसा नहीं अभी तो शुरू होने दो फिर चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्या है ना, वहां तो बस आप स्थापना में पहुंचना चाहिए, फिर विसर्जन तक रहना चाहिए, आद्योपांत पूजन होना चाहिए पूरी पक्की के नहीं, और वहां तो लेट आओ तो तुम तरकीब से अपने हाथ में किताब लेके फटाफट अरग चढ़ा चढ़ू करके साथ पा लेते कि नहीं पा लेते हो। यहाँ कोई नहीं है इंतजाम। ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, इसलिए आपको अपने यहाँ 9 माने 9 बज के होता है, 9 बज के 1 मिनट नहीं होता है, समझ रहे ना। हम तो 8:45 बजे से आगे जम जाते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट की लेट होती होगी तो आपकी कृपा से, इसलिए आप बराबर 8:45 आगे बैठना चाहिए। 8:30 बजे छुट्टी मिल जाती है तो क्या करते हो 8 घंटा जाके? चाय पानी पीते हो? क्या करते हो? कहाँ जाते हो? आराम करना है तो यहाँ।